एक तो भगवान के सगुण के ध्यान के विषय में प्रस्ताव आया और एक बालकों ने यह बात पूछी कि भगवान यानी ब्रह्म को जो ज्ञान है वो एक प्रकार से अध्ययन से हो गए या अपने स्वरूप के ज्ञान से हुए तो अपने स्वरूप के ज्ञान से हुए तो यह बात बनती नहीं, यूं नहीं बनती कि ज्ञान की तो बात ही पूछी जाती है और उसका उपाय पूछा जाता है तो ये नहीं बनता कि अपने स्वरूप के ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान हुए। दूसरी बात यह है कि विद्या के अभ्यास से अध्ययन से ये बात भी नहीं बनती। उस परमात्मा के विषय का जो ज्ञान जिससे आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हो जावे और जो वेदों के मां बतलाया है रिते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के बिना इसका कल्याण नहीं होता, वे जो ज्ञान है परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान जिसकी महिमा वेदों में गाई है कि ब्रह्मवित ब्रह्म ये भवति, ब्रह्म वेता जो है सो ब्रह्म ही हो जाता है, उस ज्ञान के लिए शास्त्रों के बीच के मां अनेक उपाय बतलाए। भगवान की कृपा से भगवान एक प्रकार से भक्ति करने से वह ज्ञान देते हैं। एक तो ये बात प्रधान है ही जो भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के 10 के श्लोक में कहा है, कतेसां सतत युगता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम और ददाम बुद्धि योगं तं ये न माम पयांति से। जो प्रीति पूर्वक नित्य निरंतर मुझ परमात्मा में लगे हुए जो मेरी उपासना करते हैं भक्ति करते हैं उनको मैं वह बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूं कि जिससे वे मुझको यथार्थ रूप से जान जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति करने से और भजने वालों को भगवान दया कर करके वो ज्ञान देते हैं। और के महात्माओं की कृपा से जैसे गीता की 4वें अध्याय के 34 के श्लोक में लिखा है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन सेवया और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम और ज्ञानी न तत्वदर्शिनो, माने उस ज्ञान को तू जान किस प्रकार से प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया कि निष्कपट भाव से प्रश्न उत्तर करके और महापुरुषों की सेवा करके उनको नमस्कार करके साष्टांग प्रणाम करके उस ज्ञान को तू उस ज्ञानी महात्मा पुरुषों से जान। और उपदेश संति ते ज्ञान ज्ञानी तत्वदर्शी नवे तत्वदर्शी ज्ञानी तेरे को ज्ञान का उपदेश करेंगे जिससे तू ज्ञान को पाकर के और फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं हो। तो महापुरुषों की शरण जाने से उसी ज्ञान की प्राप्ति होती। तीसरी बात जो है ज्ञान का साधन करने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है जो कि गीता के बीच के वहां अध्याय 18 श्लोक 50 से लेकर करके और 55 तक उसकी व्याख्या की गई है जिसका नाम है सो ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान परमात्मा का होकर के अरे वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथा अपनौती निबोध वे समाज से नहीं वह कौनते है निष्ठा ज्ञान से या परा अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ जिस प्रकार से ती ब्रह्म को प्राप्त होता है उस विषय में भगवान कहते हैं अर्जुन को मैं संक्षेप से तेरे लिए कहता हूं कि जो ज्ञान की परा निष्ठा है ज्ञान की जो परा निष्ठा है उसको मैं तेरे प्रति सो कहता हूं तो फिर कहना शुरू करते हैं कि बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम से शब्दा दिन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो विदर्शच बुद्धया विशुद्धया युक्तो यानी विशुद्ध बुद्धि से युक्त हुए बुद्धि के भीतर के वहां अंतकरण के वहां जो मल दोष है उसको एकदम नाश कर डाले भगवान के भजन के प्रभाव से निष्काम कर्म के प्रभाव से अंतकरण शुद्ध बना रहे तो विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर या यूं समझो बुद्धि कि कैसा पुरुष के बुद्धि या विशुद्ध या युक्त हो जो विशुद्ध बुद्धि से युक्त है और धृत्यात्मान नियम धृति सात्विक जो धृति है जिसका वर्णन गीता की 18वीं अध्याय के 33 के श्लोक में भगवान कर चुके हैं कि धृत्या या धार्यते और मन प्राण इंद्रिय क्रिया योगिना वे विचारिणा धृति से अपार सात्विकी धृत्या या धार्यते जिस धृति के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं का धारण हुए मन स्थिर हुए मन की चंचलता स्थिर हुए प्राणों का आना जाना स्थिर हुए इंद्रियों का विषयों के मां समझो कि अपने दर्शन भाषण श्रवण आदि करना ये भी स्थिर हो जाए माने इंद्रियां भी व्यापार करके रहित हो जा प्राण भी व्यापार करके रहित हो जा मन भी व्यापार करके रहित हो जा योग की धारणा से इस प्रकार की जो मन और प्राण और इंद्रियों की क्रिया जिस धृति से स्थिर हो जाती है उस धृति का नाम सात्विक धृति है और वही धृति यहाँ समझो की समझनी चाहिए क्योंकि ये यहाँ अपने परमात्मा के ध्यान का विषय है तो धृत्या धार्यते मन प्राण इंद्रिय क्रिया योगे ना विचारे ना धृति सा पार्थ सात्विक व्यभिचार का दोष जिसमें नहीं घटा ऐसा जो व्यभिचार रहित योग जो है उस योग से थी मन प्राण और इंद्रिया की क्रिया स्थिर हो जावे ऐसी जो धृति है माने जिस धृति के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया धारण हुए स्थिर हुए उस धृति के द्वारा मन को एकदम रोके मन को रोके और शब्दाधीन विषयांश त्यक्त्वा शब्द को आदि लेकर जितने जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन सारे विषयों का सो त्याग कर करके राग द्वेषो विदर्शच और राग और द्वेष का भी जिन्होंने त्याग कर दिया है युग से ही लघवासी यथवा काय मानस ध्यान योग पर नित्यम वैराग्य समुपासित तो के विवेक से ही लघवासी कैसा वह पुरुष है कि एकांत देश का सेवन करने वाला माने एकांत में बैठ करके आपने ध्यान लगाने का प्रयत्न करने वाला है और हल्का भोजन करने वाला सही लघवासी और यथवा कायम मानस है और जिस पुरुष ने काया और मन और वाणी को जीत लिया है अपने बस में कर लिया है उसको कहते हैं यथवा कायम मानस है और ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपासित है वैराग का अच्छी प्रकार से आश्रय लेकर के और ध्यान योग के मां नित्य परायण है नित्य ही ध्यान योग के प्राण नित्य ध्यान करता है, और जिनके मां सारे दोष हट गए हैं। कौन दोष? कि अहंकारं बलं कामं क्रोधं परिग्रहं। अहंकार बल माने एक चित्त में मैंपना जो है, मैं ऐसा जो अहंकार है, और एक प्रकार का बल का अभिमान, और दर्प माने घमंड। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं, और काम माने इच्छा और क्रोध, और परिग्रह माने संसार की भोग सामग्रियों का इकट्ठा करना। इन सब से जो रहित है विमुच्य, इन सब से सर्वथा जो रहित है और निर्मम, जिसके मां ममता भी नहीं है, और शांत और विक्षेप का भी अत्यंत अभाव है, शांति स्वरूप है, परमात्मा के ध्यान से जिसमें विक्षेप का नाश होकर के और शांत स्वरूप है, ऐसा पुरुष ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्थ होता है, और उसको ब्रह्म की प्राप्ति फिर होती है तो ब्रह्म के स्वरूप में वो सिद्ध हो जाता है। तो ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, और समस्त सर्वेषु भूतेषु और मद भक्ति लभते पराम। तो ऐसा जो ब्रह्म स्वरूप जो योगी है, ब्रह्म के मय जिनकी स्थिति, ब्रह्म कोई आत्मा रूप से अनुभव करने वाला, उसको कहते ब्रह्म भूत ब्रह्म स्वरूप। और कैसा है कि प्रसन्न आत्मा हर वक्त आनंद के वहां मगन है, और न सोचती न कांक्षती, न शोक करता है, न कोई चीज की आकांक्षा करता है, इच्छा भी नहीं करता। ऐसा पुरुष जो है मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। पराभक्ति माने वही ज्ञान की परानिष्ठा जिसका प्रकरण चलता है। भक्ति का मतलब है भेद उपासना, और पराभक्ति का मतलब है परमात्मा के विषय का ज्ञान। मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है, उस पराभक्ति रूप ज्ञान से मुझको अच्छी प्रकार से जान जाता है। भक्ता माम भी जानाति यावान निश्चाशु तत्व है, और तत्व मांग तत्व तो ज्ञातवा विस्तृत तदनंतरम। उस पराभक्ति रूप ज्ञान से मुझ परमात्मा को जैसा मैं हूँ, उसको जो का त्यों अच्छी प्रकार से, जितना जैसा मैं हूँ उसको एक प्रकार से अच्छी तरह प्रकार से जान जाता है, और जानने के अनंतर वह मुझ परमात्मा के बीच में प्रवेश कर जाता है, माने ज्योति में ज्योति अपने मिल जाता है, वो एक ब्रह्म ही बन जाता है, ये उसका फल बताया। तो इससे इस प्रकार के ज्ञान के साधन से भी ज्ञान होता है, और उस ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और समझो कि भगवान ने गीता में कहा कि ये जो गीता का अध्ययन करता है, अर्थ और भाव को समझ करके जो गीता का अध्ययन करता है, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान एक से पूजित होता हूं। अनेक प्रकार के जो साधन बताए उनमें ये भी बताया कि स्वाध्याय ज्ञान यज्ञात यत संशित व्रता, बड़े भारी तीव्र व्रत को धारण करने वाले यति लोग स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का आचरण करते हैं, माने जिसके वहां भक्ति ज्ञान वैराग का विषय है, ऐसे ग्रंथों का समझो की अध्ययन करते हैं, तो उससे भी वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और उनको ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होकर वे उस परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति जो है उनके लिए ये सब साधन बतलाए। महापुरुषों की शरण जाने से समझो कि उनसे ज्ञान मिलता है, वे महापुरुष कृपा करके ज्ञान देते हैं, और भगवान की भक्ति करने से, उसकी शरण जाने से भगवान खुद ज्ञान देते हैं। और इस प्रकार से गीता आदि शास्त्रों का अध्ययन करने से भी ज्ञान होता है, और ज्ञान का जो साधन है जिसको सांख्य योग कहते हैं उसी का नाम ज्ञान योग है। उस साधन से भी उस परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये आपको संक्षेप से बतला दी। तो ये एक प्रकार से थी युक्ति जुगत है और शास्त्र संगत है। स्वयं भगवान गीता में इस प्रकार से थी कहते हैं, तो इससे बढ़कर और क्या शास्त्र हो सकता है। तो परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है, उस मिलने के जो बहुत से उपाय है, उनके मां कितने उपाय मैंने आपको बतला दिए। अब उस सगुण के ध्यान का विषय आरंभ किया जाता है। भगवान के अनेक रूप है, उन रूपों के बीच के मां कोई तो भगवान शिव की उपासना करता है और कोई भगवान विष्णु की उपासना करता है। तत्त्व को हम विचार करते हैं तो दोनों बात एक ही है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में, महासर्ग के आरंभ के वहां स्वयं सत्चित्तानंद ब्रह्म ही समझो कि आपने विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, शिव के रूप में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान शिव है, वे भी सत्चित्तानंद घन है, और भगवान विष्णु जो है वे भी सत्चित्तानंद घन है, और वे समय समय के ऊपर भगवान विष्णु ही अवतार लेते हैं। जैसे त्रेता युग के बीच के मां वे भगवान विष्णु राम के रूप में प्रकट हुए, जिसकी कथा समझो कि पद्म पुराण के बीच के मां वाल्मीकि रामायण के मां आती है, और भी सब रामायणों के मां आती है, कि सब देवता लोग जाकर के क्षीर समुद्र के ऊपर और भगवान से अर्ज करी, देवता लोग दुखी होकर के, तो भगवान ने आकाशवाणी से यह बात कही कि अच्छा मैं दशरथ के यहाँ अवतार लूंगा चारों अंशों सहित। तो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस चार रूप के बीच के वहां परमात्मा सो प्रकट हुई, जिसमें राम प्रधान और वे उनके अंश अवतार, और श्री राम साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। इसी प्रकार के द्वापर युग के बीच के वहां जो भगवान कृष्ण के रूप में वही सो प्रकट हुई, इसलिए भगवान श्री राम और श्री कृष्ण और विष्णु एक ही चीज है, जिसकी भगवान श्री राम के मां श्रद्धा है, प्रेम है, रुचि है, उसके लिए भगवान राम की उपासना सबसे बढ़कर, और जिसकी श्रद्धा भक्ति और रुचि भगवान श्री कृष्ण जी के मां है, उनके लिए सबसे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण जी, और जिसकी श्रद्धा भक्ति रुचि जो है भगवान विष्णु में है, तो उसके लिए सबसे बढ़कर भगवान विष्णु का जो है सो जप ध्यान करना उत्तम है, और जिसकी भक्ति और रुचि और प्रेम भगवान शिव में है, तो उसके लिए भगवान शिव का भजन ध्यान श्रुति पाठ करना सबसे उत्तम है। किसी भाई ने पूछा कि आप किस प्रकार से करते हो, आप भी तो एक प्रकार से कुछ करते होंगे। तो मैं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण और भगवान विष्णु तीनों को साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप मानता हूं, इसलिए मेरे तीनों ही समान है। कोई भाई मुझसे पूछने के लिए आता है भगवान राम के विषय में या श्री कृष्ण के विषय में, श्री विष्णु के विषय में, तो वो भक्त माने जिस स्वरूप का भक्त है उसको वही बात कही जाती, उसकी जो श्रद्धा प्रेम भक्ति है उसको विचलित नहीं कर, क्योंकि सब एक ही चीज है। फिर भी आप कहोगे कि भी एक रूप से समझो, मनुष्य ध्यान करता है, समझो कि आपने अपना इष्ट देव मानता है तो कुछ तो उसमें करता ही होगा ना। तो उसका उत्तर यह है, भगवान विष्णु ने और भगवान राम ने और भगवान कृष्ण जी ने शास्त्रों के बीच के वहां उपदेश खूब उपदेश दिया है, पर उनका उपदेश जो है शास्त्रों के वहां भरा हुआ है। तो उन तीनों को देख करके के भगवान श्री कृष्ण जी का जो उपदेश है, जिसको भगवत गीता कहते हैं, जिसके 700 श्लोक हैं, ये एक जगह के वहां जैसे गीता का उपदेश हमारे को मिलता है, एक स्थान के बीच के वहां भीष्म पर्व के बीच के वहां भगवान श्री कृष्ण जी का जो उपदेश भगवत गीता, इसे को मैं इष्ट मानता हूं कि मैंने सबसे बढ़कर के भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश प्रतीत होता है। उपदेश तो भगवान राम जी का वो बहुत बढ़िया दिखता है, और भगवान विष्णु का जहां उपदेश आता है बहुत ही बढ़िया है, किंतु एक अपेक्षा तृतीया बात कही जाती है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो उपदेश, जिसको हम गीता कहते हैं, जिसके ऊपर सैकड़ी टीकाएं हैं, उससे बढ़कर के और अध्यात्म विषय के लिए, भक्ति ज्ञान वैराग के लिए दूसरा कोई ग्रंथ नहीं प्रतीत होता। अब दूसरी बात आई कि जैसे अनुकरण करना, जिसे शास्त्रों ने बताया कि यदि यदि आकृति श्रेष्ठ तब तदेवी त्रियोजन है, कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आसन करता है उसी के अनुसार इतर लोग चलते हैं। तो आचरणों के बीच के मैं देखता हूं तो भगवान विष्णु के भी आचरण बहुत बढ़िया, और श्री रामचंद्र जी के भी, और श्री कृष्ण के भी, और तीनों ही महापुरुष, तीनों ही एक प्रकार साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो फिर पूर्वापर से उस शास्त्रों को देखने से भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र जितना एक प्रकार से आक्षण और नीति युक्त, और समझो कि आपने ज्ञान और धर्म और नीति से परिपूर्ण, मर्यादा से परिपूर्ण जैसा प्रतीत होता है, वो सबसे बढ़कर प्रतीत होता है। तो इसलिए आचरण के वहां मैं भगवान श्री राम का अनुकरण करना बहुत अच्छा समझता हूँ। मुझसे उनका अनुकरण होता नहीं है, किंतु यत्किंचित मैं चेष्टा करता हूँ तो उसके अनुसार चलना अच्छा समझता हूँ। उनका एक प्रकार से अनुयायी बनकर के और उनका अनुकरण करने के लिए यत्किंचित प्रयत्न किया जाता है। तो ये सबसे बढ़कर के माना जाता है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समान, और व्यवहार और आचरण एक प्रकार से किसी का भी ऐसा नहीं प्रतीत होता। अब रही बात है, एक प्रकार से तीन बात है कि एक तो जो उत्कोटि के जो महापुरुष साक्षात जो ईश्वर के अवतार हुए हैं, उनमें एक तो बात यह है कि उनका हुक्म मानना, उपदेश मानना, शायद परमाणु कुलते लोकस तदन उभरते, महापुरुष जिसको प्रमाणित कर देता है उसी के अनुसार सब लोग चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता की तीसरी अध्याय के 21 श्लोक में कह रहे हैं, तो जो उपदेश जो है, निर्णय जो है, वो तो आपको बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो निर्णय और उपदेश जो गीता में है वो सर्वोपरि महान। इसी प्रकार से आसन के विषय में कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का सबसे बढ़कर उसको प्रतीत होता है। अब रही स्वरूप के ध्यान की उपासना की, तो ध्यान के विषय के बीच के वहां जैसा मैं सुनता हूं वर्णन भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का, तो इन तीनों के वहां ध्यान के लिए मुझको सबसे बढ़कर भगवान विष्णु का प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान श्री राम मनुष्य के अवतार में प्रकट हुए थे, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यद्यपि हम लोग मनुष्य हैं, किंतु हम लोगों से एक प्रकार से उनका बहुत अतिशय डिफरेंस था। उसकी बात ही क्या कि वे तो समझो कि आपने साक्षात भगवान थे, परमात्मा थे, और उनका आना संसार के कल्याण के लिए था, और हम लोगों का जो जन्म है वो पुण्य और पाप से है, हम लोगों का जो शरीर है वो रोग से भरा हुआ है, और समझो कि पांच भौतिक है, और उनका जो शरीर है वो दिव्य था, अनामय था, अलौकिक था, किंतु आकृति तो उनके मनुष्य की ही थी। और भगवान विष्णु का जो शरीर है एक प्रकार से थी, वो भी एक दिव्य है, किंतु एक उनका स्वरूप देवाकृति के मां है। देवता जो है उनका स्वाभाविक एक स्वरूप मनुष्य की अपेक्षा दिव्य होता है, अलौकिक होता है। देवताओं के शरीर के बीच के मां तेजस धातु प्रधान है। तेजस धातु जैसे अपने सूर्य चंद्रमा आदि की जो धातु तेजस धातु है, और मनुष्यों के बीच के मां मनुष्यों की जो शरीर की धातु है वो पार्थिक है, क्योंकि पृथ्वी के मां उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए एक प्रकार से थी उनका जो शरीर है तो एक मनुष्य की अपेक्षा बहुत ही अलौकिक है। इसलिए ध्यान जो है मैं सबसे बढ़कर विष्णु का समझता हूं। तो तीनों की एक एक चीज लेकर के हर उपासना क्या करता। तो भगवान विष्णु का जो ध्यान है वो एक अलौकिक और अद्भुत है। उनका जो प्रकाश है अलौकिक है। यूं तो उनके भीतर का जो वास्तविक जो स्वरूप है वो तो सबका चिन्मय है और दिव्य है। ऊपर में एक प्रकार की खोली जो है सो डाल ली है, जो अपने को छिपाने के लिए वो तीनों ने डाल रखी है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने तो अपने मनुष्य की खोली पर रखी, और भगवान विष्णु ने देवताओं की खोली पर रखी। तो ये इस वास्ते है कि जो वास्तु के बीच के मां उनके लिए पात्र नहीं है, उन्हें पुरुषों के वास्ते ये अपने पर खोली डाली, जिसको योग माया का पर्दा कहते हैं। नान प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है, मूढ़ो यंगना भी जाना थी लोको मामजमभ्यम। नान प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है, मूढ़ो यंगना भी जाना थी लोको मामजमभ्यम। नान प्रकाश सर्वस्य, मैं सब को यथार्थ रूप से नहीं दिखता हूँ, क्योंकि योग माया समावृत है, मैं योग की माया से ढका हुआ रहता हूँ। इस कारण से मूढ़ो यंगना भी जाना थी लोको मामजमभ्यम। मैं जो अज और अविनाशी हूँ, ऐसे मेरे स्वरूप को ये मूढ़ों का जो समूह है वो ऐसो अच्छी प्रकार से ये वो ऐसो नहीं जाना। तो भगवान का जो भीतरी जो स्वरूप है, योग माया का पर्दा उठाने के बाद का जो स्वरूप है, वो तो सबके मन चिन्हमय है, चेतन धातु है, जड़ धातु नहीं है। वहां शरीर शरीर का भेद नहीं है, और ऊपर का जो ढांचा है वो एक पर्दा डालने का है अपात्रों के लिए। अजो किसन अभ्य आत्मा भूता नाम मिश्रो किसन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवान आत्मा या मैं अज हुआ, अविनाशी हुआ, सब भूतों का ईश्वरों का भी ईश्वर हुआ। समझो कि अपनी जो प्रकृति है उसको अपने बस में कर करके और अपनी योग माया स्थिति संसार के मां अवतार लेता हूं, मैं प्रकट होता हूं। तब यदा यदा ये धर्म से गलानी भवती वार्ता व्युत्थान धर्म से तदा आत्मान सृजामी हम। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। क्यों कि परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। साधुओं के उद्धार के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग के बीच के मां समझो कि प्रकट होता हूं, यानी अवतार लेता हूं। ये बात भगवान ने गीता की चौथी अध्याय के छठे सातवें और आठवें श्लोक में कही। तो ये बात आपको बतला दी। तो अब भगवान विष्णु के ध्यान का विषय आपने बतलाया जाता है, उसका हेतु तो आपको बतला दिया, अब उसका स्वरूप बतलाया जाता है। तो भगवान विष्णु का जब ध्यान करना हो तो एकांत देश के बीच के मां पवित्र देश में करना चाहिए, जहां कहीं अल्लाह गुल्ला नहीं हुए, या कोई पहाड़ों की गुफा हो, या सघन वन हो, या गंगा का तट हो। तो यहाँ तो सभी चीज है। यहाँ जो स्वर्गाश्रम के हम आपने बढ़ के जगह में जाते हैं तो वहाँ गिरी गुफा भी है, माने पहाड़ की गुफा भी है, और वन सघन वन भी है और गंगा तीर भी है, सभी चीज है। तो यह स्थान बहुत ही उत्तम है। तो उत्तम देश कैसा उत्तम कि शुद्ध और पवित्र और निर्जन माने जन रहित एकांत, तो बड़ा एकांत स्थान है। अरे